अल्लाह ताला कहते हैं फइल्लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नरल्लती वकूदहन नास वल हिजारा उद्दत दिल काफिरीन। तो मैंने काफी टाइम ले लिया, मैं मौका दूंगा आप लोगों को कि आपको कोई इससे जो चीज समझ आई है उसकी तफसीलात बता दें, या इसमें अगर कोई सवालात हैं तो उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं इंशाल्लाह। आज हम तीन बंदे ही हैं।
जी जजाकल्ला जी, मैं उमर भाई, अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी समझ में और इस कुरान पाक को और बेहतर तरीके समझने की तौफीक दे और आपकी एफर्ट्स का शुक्रिया। मुझे ये जो स्पेशली जो हम बात कर रहे थे कि जैसे मुझे शुरू से जैसे हम चल रहे हैं या मेरी जो समझ में चीज आ रही थी कि बेसिकली जब हम कुरान पाक की तरफ आते हैं तो कुरान पाक जो है बेसिकली सिर्फ बार बार अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि वो रहनुमाई सिर्फ उनको देता है जो मानने वाले हैं या जो मान लेते हैं। तो मतलब तकवा के साथ या जब हम अपनी इकरार के साथ जब जस्तजू करते हैं इलम को हासिल करने के लिए, बात मेरी यहाँ से आ रही थी, तो वो जो डेप्थ है या वो जो चीज है इसको समझने की वो सिर्फ उन लोगों के लिए हासिल होती है जो इकरार कर चुके हैं या वो मुसलमान अपने आप को करार देते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। ये इस तरह के इस पे थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर सकें, अगर
इसके बारे में भी मैंने लिखा है, मैं बयान नहीं कर सका हूँ इसको, मैं बताता हूँ। ये जो इन कुन तुम स्वादिकीन, आगे दोबारा मिसाल आएगी अगली आयत में, जो आपका सवाल का जवाब है ना वो अल्लाह ताला ने पूरा दिया हुआ है। असल में एक चीज आपको बताई थी शुरू में, जो कनेक्शन जोड़ते हुए मैंने कहा था कि जो इल्म और ईमान या जो तकवा है उसकी जरूरत क्यों है, वो इसलिए है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बड़ी हद तक आज़ादी दी है इस दुनिया के अंदर, और उस आज़ादी का ये है कि वो अपनी सोच और अपने फैसले खुद करता है और कर सकता है। तो जितनी आज़ादी अल्लाह ताला ने दी है उतना ही उसका इम्तिहान भी है। तो इलम को पाने के लिए उसके पीछे जो मोटिवेशन होती है उसी मोटिवेशन का असल में इम्तिहान है इस दुनिया के अंदर। तो कुरान में भी जो लोग आते हैं जिस मोटिवेशन के साथ, वही चीज उनको कुरान से फिर मिलती है। यानी कि जो लोग हिदायत के लिए यहाँ पे आएंगे तो उनको हिदायत मिलेगी, और जो लोग गलतियां निकालने के आते हैं तो उनको गलतियां मिलेंगी, क्योंकि कुरान की आयत और जो उसकी सूरत के अंदर कॉन्टेक्स्ट है वो बड़े ही जुड़े हुए हैं आपस में। एक आयत सिर्फ एक चीज का नूर है, लेकिन उससे जो कनेक्टिविटी है बाकी चीजों की वो उस सूरत के अंदर या दूसरी सूरतों के अंदर मौजूद है, इंटरकनेक्टेड है ना। तो अब ये है कि जो बंदा गलतियां निकालने के लिए आएगा तो वो कनेक्टिविटी जनरेट नहीं कर सकेगा कुरान के अंदर, क्योंकि जो तालिब है, जो जिसको यकीन हो गया है कि ये अल्लाह की किताब है, उसको ये यकीन होगा कि मुझे मेरी मंजिल मिलेगी, और वो उसी यकीन के साथ उस किताब को पढ़ता है और उसके अंदर अपनी जो मोती है ना उनको तलाश करता है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है यही इंसान को असल में हिदायत से जोड़ने या उस हिदायत की किताब के जरिए भटकाने का जो वसीला है ना वो फराहम करती है। यानी किताब अपनी जात में तो हिदायत है, लेकिन यह है कि इंसान का जो अपना बिहेवियर है किसी भी चीज को सीखने का या किसी भी अमल को करने का या जो उसके मकासद हैं, वो असल में वो फैसला करते हैं कि वो उस किताब से क्या चीज निकालेगा वो बंदा। असल में यही वो बात है जिससे अल्लाह ताला कहते हैं कि इस किताब से कुछ लोगों को हिदायत मिल जाती है और कुछ लोग भटक जाते हैं। वो असल में ये कि द काइंड ऑफ यूज यू वांट टू हैव इट यू विल गेट इट एक्चुअली। इसकी बेहतरीन मिसाल यही है कि दुनिया में जितनी भी चीजें तख्लीक की गई हैं, नेमतें अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं, उनके डुअल यूसेज होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मिसाल मैं देता हूँ, जैसे टीवी है हमारा या फोन है, सोशल मीडिया है, इनमें से कोई भी चीज अपनी जात में बुरी नहीं है। असल में जो इंसान उसको इस्तेमाल करता है उसका इस्तेमाल असल में ये फैसला करता है कि वो चीज उसके लिए बुरी है या उसके उसके लिए फायदा मंद है। तो यही मामला असल में इसी तरह में कुरान का है। कुरान अपनी जात में एक नेमत है, यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो नेमत है असल में इंसान के लिए, अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो। यहाँ भी यही पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। मजीद आगे आयत आएगी तो उसमें दोबारा इंशाल्लाह उसको रिपीट करेंगे।
जी उमर भाई, आपने बहुत माशाल्लाह इसको बताया तफसील से, तो बात यही बनती है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि मैं अपने आप को इस चीज पे, मतलब ये कि मैं मुसलमान होने हद की जो आपके अंदर जो है वो समझ लें कि एक इंटेंशन है, ये भी अल्लाह ताला के फजल के बगैर तो नहीं आ सकती, मतलब यहां तक पहुंचना, और उसके बाद ये रहनुमाई का अमल तो सारा बाद में है, और ये जो है मुझ में या किसी और में, ये मेरे ख्याल में तो अल्लाह के फजल के बगैर बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं, जिस पे उसका फजल है वही वो पहुंच सकता है उदर तक।
ऐसा ही है। देखिए इसके दर्जात है ना, आप देखें कि क्लास में आपने देखें कि वही बच्चे उस्ताद से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं जो उस उस्ताद की इज्जत भी करते हों, उसको उस्ताद वाकया मानते भी हों, उनको उन बच्चों को यकीन होता है कि ये जो उस्ताद है ये इल्म का मंबा है और मैंने उसके सामने जो है ना झुक के उससे इल्म लेना है, तो उन बच्चों को वो इल्म मिल भी जाता है। और जो शरारती बच्चे होते हैं जो बदतमीजियां करते हैं ये वो उनकी उनको फिर वो उस्ताद जो है ना उस पर्सपेक्टिव से नजर भी नहीं आता कि ये हमारे लिए जिंदगी के लिए काबिले रहनुमा है असल में।
बिल्कुल, ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी है, मतलब तमसील बयान की। बेसिकली तो यकीन जो है उस्ताद पे वो ही आपको पार लगाता है, उस्ताद चाहे कुछ ना भी कर पा रहा हो वो कोशिश करता है अपने सी, लेकिन है कि जो स्टूडेंट का या शागिर्द का जो यकीन होता है उस पे वो उसको मोटिवेट भी रखता है, उसको तवज्जो को भी बरकरार रखता है।
कुरान में यही है ना कि ईमान के दर्जात है ना, शुरू तो लाजिम बात है इंसान कुछ अकली दलायल या इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने खुद एक मादा रखा हुआ है ढूंढने का, वही उसका आगाज है कि हर इंसान अपने खुदा को ढूंढना चाहता है असल में, और उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है हर बंदा उस आइडेंटिटी को पाना चाहता है, लेकिन फिर उस इंसान की अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल या जिन लोगों में वो उठता बैठता है वही तय करते हैं कि वो किताब की तरफ कितना जा रहा है असल में। कुछ चीजें लाजमी बात है अल्लाह ताला के पास होती हैं जिसको जबर कहा जाता है, कुछ चीजें इंसान की आजादी अल्लाह ताला ने दी है, तो जो चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसका तो जवाब भी नहीं होगा, लेकिन जिन चीजों में इंसान फैसला कर सकता है वो उसको उसका जवाब देना होगा। फिर ये मैं कह रहा हूँ कि इसका दर्जा बदर्जा होता है, इंसान जब किताब की तरफ आता है तो वो उसको जब एक मोती मिलता है तो वो खुश होता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हाँ उसको अगर अपना नफ्स जो है ना वो ड्राइव करके दूसरी तरफ ना लेके जाए तो वो उस जगह पे कायम रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ईमान का जो मामला है ये पहले भी बात हम कर चुके हैं पिछले सेशन में कि ईमान इंसान का कभी भी एक जैसा नहीं होता है। ईमान के बारे में हजूर पाक सलम की हदीस मुबारक भी है कि ईमान घटता बढ़ता है, तो जो तज़किया का मामला है उससे ईमान को फ्रेश रखा जाता है। तज़किया के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं जिसमें बड़ा सोर्स अल्लाह की किताब है, फिर इंसान के अच्छे दोस्त हैं जिनमें वो उठता बैठता है, सही है, और इसका इससे भी बड़ा सोर्स असल में अल्लाह ताला से दुआ है। जिस तरह सूरतुल फातिहा में हमने देखा है ना कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें दुआ सिखाई है ईमान के लिए। दुआ की हकीकत यही है कि दुआ इंसान तभी करेगा जब उसको रब का यकीन मौजूद होगा उसके दिल में किसी हद, कि उसको पता होगा कि वाकई मेरा रब है। एक तो दुआ होती है ना कि अगर रब है तो चलो मेरी दुआ कबूल कर ले, तो वो तो दुआ नहीं हुई, वो तो क्या कहते हैं हवाओं में तीर मारने वाली बात हो गई ना। लेकिन अगर रब के यकीन के साथ दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला हिदायत देता है और मौके भी देता है इंसान को असल में, तो वो वसीला उसी की जात है। इसमें देखें ये आयत सामने आ रही है दोबारा, इन कुंतुम स्वादिकीन बीच में जो आया हुआ है ना इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है इन कुंतुम फी राई बिन, फिर लिखा हुआ है कि इन कुंतुम स्वादिकीन। इन कुंतुम स्वादिकीन का मतलब ये है तुम लोग असल में तुम्हारे जाहिर और जो बातिन है, ये आयत ये बता रही है कि तुम्हारा जो जाहिर और जो बातिन है इसमें तजाद है असल में, जो तुम लोगों के सामने रख रहे हो और जो तुम असल में हो उसमें तजाद है, और अल्लाह ताला को पता है इस चीज का, लेकिन ये एक मेजरिंग स्टिक है, रूल ऑफ थंब है जिसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे जो दिलों का वो है फसाद है फिस्क की तरह बाहर निकल रहा है, ऊपर ऊपर जिक्र किया गया है ना फासिदीन का। अल्लाह ताला ये दूसरी इसकी मैंने लिखा कि नफाक और कुफर की ये अखली दलील है। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बंदे को दावत दें इस्लाम की, तो ये इसका पहला दर्जा नहीं है कि आप उसको कहेंगे, वो उसको कहें कि फर्ज किया स्टॉल लगाया हुआ है कहीं पे हमने यूनिवर्सिटी में, और हम रमजान है और हम लोगों को फर्ज किया अफ्तारी करा रहे हैं, जर्मन आते हैं या दूसरे लोग, तो वो कहते हैं हाँ जी क्या है जी हम मुसलमान हैं, अच्छा ये इस्लाम क्या चीज है? आप कहते हैं कि ये है एक खुदा है और हमारे नबी हैं, तो वो कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ। तो उसमें जाके अब एकदम आप नहीं कहते कि फिर अगर नहीं मानते तो चलो तुम एक सूरत लेके आ जाओ, इस तरह ये पर्सपेक्टिव नहीं है। जो दावा का पर्सपेक्टिव है बुनियाद है, और ये जो है ना ये आखिरी बाउंड्री लाइन है। अब देखें इसमें बिसूरत मिसली ही भी आ गया है, जो बाउंड्री लाइन का तस्वर है ना, दीवार का तस्वर है, वो भी अल्लाह ताला ने बीच में डाल दिया। अगर आप देखें इसको, बड़ी जबरदस्त इसकी तस्वीर कशी है असल में, कि अल्लाह कहता है कि इस आप देखें सूरत के पहले रैब है और सूरत के बाद सिद्क है असल में ना, तुम लोग असल में झूठे हो इस दीवार से बाहर बाहर जो तुम खड़े हो असल में, और तुम इस सूरत के अंदर इसलिए नहीं आ रहे हो, अब अल्लाह ताला किताब की दीवार है फुरकान है उसके अंदर इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम लोग असल में सच्चे नहीं हो अपने जो बात तुम करते हो असल में, तो इसलिए नफाक और कुफर की अकली दलील है यह अल्लाह ताला ने दी है। देखिए किसी चीज को साबित करने के लिए एक तो रूहानी मामला होता है, को हम लोग देख नहीं सकते हैं छू नहीं सकते हैं, तो ये इसको अल्लाह ताला ने मटेरियलाइज किया है उनके निफाक को, असल में मटेरियल एक दलील ये है, तुम लोग अगर ये इस तरह कर लो तो तुम साबित हो जाओगे और तुम बेशक साबित तो कर ही नहीं सकते हो, तो लिहाजा तुम लोग असल में अंदर से तुम्हारे अंदर नफाक भरा हुआ है। यही एक ईमान और कुफर का इल्मी और मंतकी तजिया अल्लाह ताला इस आयत में पेश कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये आखिरी दर्जे की दावत हक है असल में, किसी भी इंसान के मामले में जब ये यकीन हो कि वो जानबूझ के जो है ना ये मामला कर रहा है, तो वहां पे अल्लाह ताला का ये फैसला है कि उसको ये बात पहुंचाई जाए, अगर ऐसा बनते हो तो फिर इस तरह की चीज लेके आ जाओ, अगर तुम समझते हो कि ये किसी बंदे ने लिखा हुआ है। इससे मेरे ख्याल में मजीद कुछ चीजें वाजे हो गई हैं।
जी जजाकल्ला उमर भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला। ये चीजें जो स्पेशली जो है ये मेरे ख्याल में हमारे लिए जो है जो मुनाफिक की स्टेट है, मैं तो वैसे हमेशा इस चीज पे कंफ्यूज रहता हूँ, इसको समझना बहुत मुश्किल है, जो अल्लाह ताला मतलब ये समझता है इस चीज को बिल्कुल।
ऐसा ही है। देखें एक चीज आपकी सवाल की वजह से मेरे जहन में आ गई है कि देखें ये पहले हमने जिक्र वैसे किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं भी मुनाफिकीन का नाम नहीं लिया, कुफार का नाम लिया है, इस तरह अबू लहब है, लेकिन मुनाफिकीन के को पॉइंट आउट नहीं किया गया कि फलाना 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 मुनाफिक। उसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि कुरान दावत है अल्लाह ताला के हक की तरफ, और इंसान का जो जो इंसान के अंदर नफाक होता है वो मौजूद होता है। असल में ये देखना होता है कि वो नफाक किस दर्जे में है, क्या वो उसके अंदर जो निफाक है वो ईमान से बढ़ गया, या ये है कि ईमान ने उस निफाक को या उस जो उसके अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं, जो कुछ पर्सपेक्टिव हैं, जो उन लैक ऑफ क्लैरिटी मौजूद है, मैं इसको यूं कहूंगा, उसको उसके ईमान ने अपने गिरफ्त में रखा हुआ है। वो आयत है ना कुरान की, मैं वहां से ये माने ले रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मोमिनीन को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उनके दिलों में से निफाक को निकाल दिया जाएगा, कि ये चीजें ये चीज मौजूद तो होती है लेकिन इंसान उसके अपने जहन के अंदर तजर्बात जो होते हैं जिंदगी में, या जो दूसरे सबूत होते हैं ईमान के, वो उसको दबाए रख। और ये जो जंग है, मैं अगर निफाक ना कहूं कि अनक्लियरनेस का और क्लियरिटी का, ये तो हर इंसान के अंदर मौत तक चलता रहेगा, माँ सिवाय अंबिया के, क्योंकि अंबिया को अल्लाह ताला जिस जगह से इल्म देते हैं, जिस जगह से उनको विजडम देते हैं, वो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। मालूम है ना कि हजूर पाक सल्लम जिस तरह मेराज शरीफ पे चले गए, तो अल्लाह ताला ने उनको वो चीजें दिखा दी कि वो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि फरमाया कुरान में कि जो जिब्रेली अमीन है वो भी उससे आगे नहीं जा सकते थे, जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हाथ से आगे निकल गए। मतलब ये है कि ये हर वक्त का कुड़ना है कि शायद मैं मुसलमान हूं भी कि नहीं हूं, इससे इंसान को निकलना चाहिए और इस चीज की हकीकत की समझ आनी चाहिए कि ईमान घटता बढ़ता है, जब बंदा करता है ना, कहता है ना कि ईमान घटता बढ़ता है, तो इसका दूसरा मतलब यह है जो शक है इंसान के दिल के अंदर वो भी घटता बढ़ता है। यानी जब ईमान कम होगा तो लाजिम आता है उसका वो दूसरा स्टेट ऊपर जाएगा ना, तो उसी को तो कंट्रोल करना बनता है असल में।
एग्जैक्टली हाँ जी, नहीं ये माशाल्लाह बढ़िया तवज्जो के साथ, ये काफी पहले सेशंस में भी इस पे जिक्र किया आपने। तो ये मतलब स्टेट जो है इसको फाइट बैक करते ही रहना पड़ता है इंसान को, और ये चीज जो है मुसलसल जो लड़ाई है, जंग है, अंदर जारी रहती है।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। अमूमन लोग गलती करते हैं इसमें कि वो समझते हैं कि हमारे पास इलम आ गया है, और मेरे अंदर खुद एक अरसे तक ये चीज गलतफहमी मेरे अंदर भी थी। मैं समझा था कि इलम की ज्यादती ईमान की दलील बनती है, हालांकि ये ऐसी चीज नहीं है। इलम की ज्यादती ईमान का दलील नहीं है, बल्कि ईमान अपनी जगह एक चीज है और इलम अपनी जगह एक सब्सटेंस है, और इलम इनफाइनाइट है। खुदा का इलम जो है, तो वो इलम आप इंसान के लिए तभी फायदा मंद होता है जब उसके दिल में ईमान होता है। मैंने पहले भी शायद यहाँ पे मिसाल दी थी या नहीं थी मुझे याद नहीं है, वो जो दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, उसमें आप देखेंगे कि मुमन तर्जमा किया जाता है कि या अल्लाह मेरे इलम में इजाफा फरमा, जो कि इनकम्प्लीट है असल में। अगर अरबी की कंस्ट्रक्शन से आप देखें ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं रब्बी ज़िदनी, ज़िदनी नी जो साथ लगा हुआ है ना वो जिद के साथ लगा हुआ है, इल्म के साथ नहीं। इल्मी नहीं कहा हुआ कि रब जिद इल्मी, कि मेरे अंदर ज्याती फरमा इल्म की, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें इतनी खूबसूरत ये किताब है कि उसमें एक एक चीज जो है ना दूसरे से जुड़ी होती है उसके कॉन्टेक्स्ट से। अल्लाह ताला हमें ये समझा रहे हैं कि तुम लोग ये मांगो कि ए अल्लाह मेरा इजाफा फरमा, मेरा इजाफा फरमा, मेरा यानी नफ्स का जो इजाफा है मेरा इल्म, ताकि उसमें आ जाए। इसका तशरी ये बनती है असल में कि मेरा इजाफा इल्म के लिए फरमा, कि जो
जैसे
इल्म
वो
आए वो मेरे मेरे उससे बाहर ना निकले, मेरे क्या कहते हैं उसको, मेरे पॉट से बाहर ना छलक जाए, बल्कि वो
एग्जैक्टली
इल्म
जैसे
हो
मूसा
कि जो
अलैहि
मुझे
सलाम
फायदा
ने,
दे।
मूसा अलैहि सलाम ने जैसे जिक्र किया था कि मेरा सीना कुशादा कर दे, मतलब और
हाँ
जो है एग्जैक्टली
बिल्कुल, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है, सीना मेरा सीना कुशादा करते, बिल्कुल वही बात है, आपने सही नोट किया है। अल्लाह से इलम मांगना चाहिए, लेकिन इस तरह हजूर पाक सलम की वो दुआ भी है कि इल्म नाफे मांगना चाहिए अल्लाह ताला से, कि वो इल्म जो इंसान जो जिस मकसद के लिए पैदा हुआ है उस मकसद में उसके लिए नफा बख्श बन जाए। क्योंकि शैतानों के पास भी इलम है, जादूगरों के पास भी इलम है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा अकलमंद हूँ इसलिए मैं जो बात करता हूँ वही हकीकत है और बाकी लोग बेवकूफ हैं, तो ना तो अकल, अकल को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो खुदा को इस तरह पाले या खुदा के बराबर खड़े हो जाए, और ना ही इलम को ये ताकत दी है, बल्कि असल ताकत जो है इंसान के नफ्स के अंदर है, कि उस नफ्स पे काम करना, अपने ईमान पे काम करना जो है ना, ये हर मुसलमान का मुसलसल अमल होना चाहिए। कोई इलम में कम है या ज्यादा है, इससे इतना फर्क अल्लाह ताला के उस पे नहीं पड़ता। ये है कि इलम की जुस्तजू और तगोदो, ये एक डिमांड है खुदा की तरफ से कि इंसान अपने जो नाफे इलम है उसमें हर लहजा कोशिश करता रहे कि वो उसके पास आता चला जाए, क्योंकि इलम ही वसीला है असल में हिकमत का ना, कि इलम जितना बढ़ेगा और तजर्बात जितने जिंदगी में बढ़ेंगे, अल्लाह ताला उस इंसान के अंदर विजडम भी लेके आते हैं। और नबी पाक सल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, जो वो आयत है ना हमने नाजिल किया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यतलू अलैहिम आयाती वही जकी वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, दर्जात है ना इसके, स्टेप बाय स्टेप हिकमत का दर्जा तभी होगा जो इल्म के होते हुए जाएगा। असल में डिस्कशन में ख्याल में काफी हमारी माशाल्लाह हो गई है, मेरा भी गला सूखता चला जा रहा है।
हाँ जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और हमें जोड़ने की इस तरफ जो है आपने जो कोशिश शुरू की है, इंशाल्लाह ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग तो होता है। और दूसरा स्पेशली जो आपने मेरा हाल अहवाल पूछा था आपने पिछले, और नोटिस किया, थैंक यू सो मच।
असल में आप वो प्रोग्राम में ही चले गए थे मेरे ख्याल में, क्योंकि वो उमर भाई आपसे पूछ रहे थे कुछ, ताहिर भाई कोई बात करेंगे, तो मैं कहता ताहिर भाई तो नजर नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में चले गए हैं
हाँ जी, बस वो
तो।
एक्चुअली उस दिन पे कुछ पूरे रमजान में इसी तरह ही है कि वो वीकेंड्स ही होते हैं, पहले जॉब्स होती हैं बीच में डेज में, तो भी उस दिन भी कुछ ऐसा ही था काम वो कुछ का। मैंने कहा ये कुरान जब आप बता रहे थे आया, तो मैं वही अटेंड किया, और उसके बाद सवाल जो क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन वाला सेशन जो है वो मैं उसमें से निकल गया था।